الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ ویک کے اندر قرآن کی جگہ آپ لوگوں کو جو کرائسس چل رہے ہیں پاکستان کے اندر اسی سے ریلیٹڈ بتایا تھا، جو لانگ مارچز اور سٹنز ہیں ان سے ریلیٹڈ بتایا تھا، اور امپورٹنس بتائی تھی آپ لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کی اور ڈیموکریسی کی اور ایک سسٹم کے چلنے کی۔ پرفیکشن کہیں بھی نہیں آ سکتی، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک اسٹیبلٹی ضرور ہوتی رہے۔ اس کے اندر یہ بھی بتایا تھا کہ اتنے عرصے کے بعد جا کے پاکستان پہلی دفعہ اتنا میچور ہوا تھا یا اتنا اسٹیبل ہوا تھا کہ صرف پولیٹیکل لیول کے اوپر رہتے ہوئے کہ ایک گورنمنٹ نے اپنا ٹائم پورا کیا اور نیکسٹ گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کیا، سکسیزفلی ہینڈ اوور کیا۔ اس معاملے میں ابھی بھی ہم لوگ پولیٹیکلی بہت میچور نہیں ہیں۔ امریکہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو امیجن کریں کہ وہاں پہ جب گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے، یہ 3 مہینے کے لیے وہ حکومت کریں گے اور باقی لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ اتر گئے اپنے عہدوں سے، پارلیمنٹ ختم، سب کچھ ختم، الیکشنز ہوں گے اور وہ پھر اس کو ہینڈ اوور کیا جائے گا، نئی گورنمنٹ جو آئے گی حلف اٹھائیں گے اس طرح کا۔ اور نہ ہی امریکہ کے اندر اس طرح ہے کہ پریزیڈنٹ بھی ہے، پرائم منسٹر بھی ہے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ ہی رہے گا، اپنی حکومت چلاتا رہے گا، کانگریس وہی چل رہی ہے، سب کچھ اس طرح چل رہا ہے۔ ان کی موجودگی میں الیکشنز ہوں گے، ان کے ہوتے ہوئے الیکشنز ہوں گے۔ یہ ان کی میچورٹی کا عالم ہے کہ ان کو اس قدر اعتماد ہے کہ، اور عوام کو بھی اعتماد ہے، ان کو بھی اعتماد ہے اور عوام کو بھی اعتماد ہے کہ اس معاملے میں کوئی بڑے لیول کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کے بھی چلتے رہتے ہیں، جیسا جب بش جیت کے آیا تھا 2000 کے اندر، تو 2000 کے اندر ٹیکسس اسٹیٹ اور اس کے جو اپنا علاقہ جو تھا وہاں پہ الیگیشنز آئے تھے، جب اس کا الگور کے مقابلے میں اس کے الیکشن تھے تو الیگیشنز تب بھی آئے تھے۔ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے، جہاں انسان ہے وہاں پہ بےمانی کے چانسز ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوگا وہ۔ لیکن وہاں پہ اوور آل سسٹم اتنا انہوں نے وہ کر دیا ہے یا اس طرح اس قدر میچور ہو گئے ہیں وہ لوگ کہ گورنمنٹ رہتی ہے ادھر اور اس گورنمنٹ کے رہتے ہوئے الیکشنز ہوتے ہیں۔ ان کا جو الیکشن کمیشن ان کا ہے وہ اس قدر اتھارٹیٹیو ہے، اس قدر پاورفل ہے وہ، کہ اس کے راستے میں کوئی اور چیز حائل نہیں ہوگی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے ہاں جو الیکشن یا جو کچھ ہوگی وہ اب ذمہ داری آرمی کو دے رہے ہیں کہ کاغذوں کی جو پرنٹنگ ہوگی یہ آرمی کے سپرویژن میں ہو رہی ہوگی، یہ فلانی چیز کسی اور ادارے کے سپرویژن میں ہو رہی ہوگی۔ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کافی وہاں پہ اسٹیبل اور اسٹرانگ ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کی ترقی کا ایک عالم یہ ہے، جو ان کی اچھی باتیں وہ ہمیں اڈاپٹ بھی کرنی چاہیے، کہ ارسپیکٹو کہ ان کے ہاں پریزیڈنٹ جو مرضی آتے آئے ہوں، ان کی اوور آل پالیسی جو ہے وہ نہیں ہٹتی، ان کی پالیسی جو ہے وہی چلتی رہتی ہے، اس پہ نہیں کوئی فرق پڑتا۔ باقی جو ملک ہیں جن کے اندر انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں تھے، وہاں پہ بلکہ لوگوں کے اوپر زیادہ اثر تھا، لوگوں کے اوپر زیادہ تھا، وہاں پہ بالکل اپوزٹ حساب رہا ہے۔ فار انسٹنس، جب بادشاہت چلی آ رہی تھی 200 سال سے رشیا کے اندر، 1917 کے اندر وہاں پہ کمیونسٹ ریولیوشن آیا تھا، لینن کامیاب ہوا تھا اور اس کی جو بولشویک پارٹی تھی وہ آگے تھی حکومت کے اندر، اور کمیونزم یا سوشلزم کی جو ملک کے اندر شروع ہوا تھا، لیکن چند سال کے اندر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد جو اس کی پارٹی میں سے بندہ آیا تھا جس نے لیڈ کیا تھا وہ تھا جوزف اسٹالن۔ جوزف اسٹالن نے ایک پیزنٹ سوسائٹی، جہاں پہ لوگ اکثر کے اکثر لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں، پرابلمز اتنے زیادہ ہیں ان کی، ایک بہت بیکورڈ جگہ کو اس نے ایک نئے نظام کے ساتھ اس طرح اٹھایا تھا کہ صرف ان 30 ایئرز وہ سپر پاور بنا دیا تھا اس نے، لیکن وہ اکیلے نہیں کیا تھا، اسے سپر پاور بھی بنایا تھا اور نیوکلیئر پاور بھی بنا دیا تھا۔ 1945 کے اندر جب امریکہ نے جاپان کے اوپر نیوکلیئر بلاسٹ کیے تھے تو اس نے اپنے سائنٹسٹ کو وہاں پہ جایا بھیجا تھا کہ جا کے ذرا فائنڈ آؤٹ کرو کہ ہوا کیا ہے نا، یعنی کہ اس کی سائنس فائنڈ آؤٹ کرو۔ وہ خود تو نہیں تھا اس فیلڈ کا، نہ اتنا کوئی پڑھا لکھا تھا، لیکن اس نے کہا کہ جا کے فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ کیا چیز ہے اور ہم کس طرح ایکوائر کر سکتے ہیں۔ اینڈ جسٹ ان 4 ایئرز 1949 کے اندر سوویت رشیا جو تھا وہ سپر پاور، نیوکلیئر پاور بن چکا تھا۔ 53 کے اندر جب وہ ڈیتھ ہو گئی اس کی، اس کے بعد رشیا کا دوبارہ یا سوویت یونین کا ڈاؤن فال دوبارہ آتا رہا، اور بعد میں جا کے جب وہ، آپ کو پتا ہے کہ افغان انویژن انہوں نے کی اور اس کے بعد وہ رشیا پہ کولیپس ہی ہو گیا، ٹوٹ گیا سوویت یونین، ٹوٹ گیا، کولیپس ہو گیا۔ حال یہ ہوا کہ پھر وہ اور کئی ریاستیں، کئی ملک اسے ٹوٹ کے بن گئے تھے۔ یہ کیوں ہوا تھا کہ اتنی بڑی ایگزامپل، ایٹ لیسٹ مجھے جتنا پتہ ہے ابھی تک، اتنی بڑی ایگزامپل نہیں ملتی کہ ایک پیزنٹ سوسائٹی سے एक सुपर पावर बन जाना और न्यूक्लियर पावर बन जाना, इसकी एग्जांपल मेरे नहीं ख्याल कहीं और मिलती होगी। यानी कि बिल्कुल बहुत ही बड़ा चेंज आया था वो। और जो एक चीज़ समझ लग रही थी कि शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हिटलर को कोई हरा नहीं सकता, हिटलर को इसी की फौजों ने हराया था। और बर्लिन के अंदर भी यही गए थे, इसकी बॉडी को भी, हिटलर की जो बॉडी थी, हालांकि उसने सुसाइड किया था, उसकी बॉडी को भी ये रिकवर करके लाए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, सब कुछ जो चल रहा था, सारा निज़ाम चल रहा था, वो एक बंदे के ऊपर चल रहा था। जब वो बंदा उसमें से हट गया, बंदा मर गया जब, वो तो वो सब कुछ गया। ऐसा नहीं कि वो करप्ट नहीं था, वो करप्ट भी बहुत था, उसने अपने लोगों के ऊपर भी बहुत जुल्म किए थे, बहुत कुछ किया था, लेकिन मुल्क की लेवल के ऊपर वो रशिया को इतना या सोवियत यूनियन को इतना ऊपर ले आया था। अमेरिका का क्या बात थी, अमेरिका के बहुत सारे प्रेसिडेंट, इवन हमें उस दौर के प्रेसिडेंट, तमाम प्रेसिडेंट्स का नाम भी नहीं याद कि वर्ल्ड वॉर वन के दौरान कौन से प्रेसिडेंट्स थे, उनके टूर के अंदर कौन कौन से प्रेसिडेंट्स थे, उनके आर्मी चीफ कौन था, फलाना कौन था, लेकिन उनके यहाँ इदारे, इंस्टीट्यूशन उन्होंने इतने अपने स्ट्रॉन्ग रखे हैं कि उनकी पॉलिसीज़, उनकी जो तरक्की है उसमें हायल नहीं होते। उनकी जो तरक्की है उसके अंदर गवर्नमेंट का चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता। बिलफर्ज अगर ये गवर्नमेंट लुढ़क जाती है अभी, तो ये बताएं मेट्रो प्रोजेक्ट का क्या होता। ये तो जो खुदाइयाँ हैं, खुदाइयाँ रहती ना ये इस तरह ही, और जो थोड़ा बहुत बना चुके थे पिलर्स वगैरह, वो पिलर के पिलर उस तरह ही खड़े रहते, और अगली गवर्नमेंट ने लाजमन इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करना था कि ये जी करप्शन से भरा हुआ प्रोजेक्ट था, इसके अंदर ये हुआ था, वो हुआ था, केसेस खोलने थे, प्रोजेक्ट ख़त्म, और जो पैसा लग चुका वो भी ज़ाया हो गया, बर्बाद हो गया। उनके यहाँ ये जो काम होते हैं, ये उनके इदारे इतने स्ट्रांग हैं कि उनको पता है कि उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स लेके चलने हैं। हमारे यहाँ NHA हो गया, जिनका काम रोडों के ऊपर है, सड़कों की सारी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन पोलिटिसाइज़ किया हुआ है, हमने हर इदारे को पोलिटिसाइज़ किया हुआ है। ये आप देखें कभी एयरपोर्ट के पास जाएँ, इलेक्शन हो रहे होते हैं जब, तो जरदारी की तस्वीरें लगी हुई होती हैं, नवाज शरीफ की तस्वीरें लगी होंगी, एयर लीग, फलानी लीग, क्यों हो क्या रहा है, वो एयरलाइन या जो एयरपोर्ट सब कुछ जो है वो सियासी बनाए हुए उन्होंने। तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे, वो इदारे बहुत कमज़ोर हैं। बाहर के मुल्कों के अंदर इदारे बहुत स्ट्रांग हैं, इदारों की बुनियाद के ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैच्योरिटी कुछ ना कुछ तो ज़रूर थी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी कुछ ना कुछ ज़रूर थी। और आपको मैंने बताया था कि कॉन्शियस लेवल इतना रेज हो गया है, पिछले फ्राइडे क्लास में बताया था कि आर्मी मार्शल लॉ नहीं लगाएगी और लगा नहीं सकती, क्योंकि पब्लिक की तरफ से प्रेशर आएगा और पब्लिक जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये लास्ट वीक की क्लास में बताया था, जबकि अभी वो पार्लियामेंट के आगे नहीं गए थे और इतनी ज़्यादा हाइप नहीं बनी थी, वो तो बाद में जाके ज़्यादा हाइप बनी थी। लेकिन मैंने किस बुनियाद के ऊपर ये बात कही थी, जो कि बात सही है कि नहीं मार्शल लॉ लग सकता था और लगाया भी नहीं गया, उसकी वजह यही थी कि पब्लिक कॉन्शियसनेस जो है वो अब उस तरह का नहीं रहा पहले वक्तों की तरह वाला कि आर्मी आ जाएगी और उसके बाद जो है वो जो बाकी जितने भी अपोजिशन की पार्टियां हैं वो मिठाइयां बांट रहे होते हैं और नाच रहे हैं कि बस ये हमारे, उस टाइम के टारगेट्स क्या होते थे, ये हुकूमत किसी तरह से जाए, बाकी देखी जाएगी बाद में क्या होता है। और मीडिया से जब बात करते हुए मुख्तलिफ लोगों ने बात की थी, भी बात बिल्कुल ठीक थी कि तारीख के अंदर शायद पहली दफ़ा इस तरह हुआ है पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट चल रही है और तमाम पार्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ हैं। मूवमेंट एंटी गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन उसके बावजूद तमाम पार्टीज जो हैं जो अपोजिशन में हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट के साथ हैं। अगेन ये है पॉलिटिकल मैच्योरिटी, ये एक टेस्ट था हमारी इस सिस्टम के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है कि प्रिवेल किया है। और जो बात 10 दिन पहले या 11-12 दिन पहले जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल दे दिया था, वो तभी अगर मान लिया जाता तो हमारा नुकसान ना होता कि हम आपके तमाम मुतालबे मान लेंगे, इवन रेजिग्नेशन भी मान लेंगे, सिर्फ ये चीज़ कंडीशनल होगी कि जुडिशल कमीशन का जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुकाबले में अगर गिल्टी फाउंड हुआ नवाज शरीफ या उसकी गवर्नमेंट, तो तब वो इस्तीफ़ा दें। अगर इस तरह वाकई एक प्लान्ड रिगिंग हुई है, छोटी छोटी रिगिंग तो होती है, मैं आपको बताया 2000 के अंदर इवन बुश एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इल्ज़ाम था कि टैक्सेस के अंदर रिगिंग हुई है, अगर उस टाइम ये मान लिया जाता तो कोई प्रॉब्लम ना होती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और मैं भी उसी के सपोर्ट के अंदर बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट हमारी अच्छी है। जो मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरा भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी है प्योरली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पाकिस्तान के लिए ये अच्छा है कि हमारे सिस्टम चलें और हुकूमत चले। लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्या कहा था कि 5 साल के जरदारी गवर्नमेंट ने कोई काम का प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया सिवाय स्कैंडल्स और करप्शन, और उस पर भी कोई कमी नहीं आई। बिजली का हाल बुरा से बुरा होता गया, हर चीज़ झूठे वादे जो कुछ भी था, लेकिन फिर भी ये अच्छा हुआ कि 5 साल मुकम्मल हुए और गवर्नमेंट नेक्स्ट आई, ये फिर भी अच्छा हुआ है। मेच्योरिटी फिर भी बेहतर होती है बजाय ये कि हम एक ही पहिए के अंदर घूमते रहें, क्योंकि अगर ये सिस्टम कोलैप्स हुआ तो हम पहले बहुत तजर्बे कर चुके हैं, कम से कम 3 मार्शल लॉ तो हमारे पास आए हुए हैं ना, हमने अच्छी तरह देखा हुआ है कि फ़ौज भी क्या करती आई है और तमाम पार्टीज़ क्या करती आई हैं। इसलिए जो गंद हमारे पास है हमने उसी को ही किसी तरह से चलाना है, हमने उसी को ही किसी तरह से हमने इम्प्रूव करना है। तो गवर्नमेंट का इसमें कोई कमाल नहीं, ना गवर्नमेंट के लिए कोई डिफेंस की बात हो रही है, बल्कि इनफैक्ट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को किसी किस्म का क्रेडिट नहीं जाता है कि उन्होंने इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया है, अच्छा हैंडल किया है बुरा हैंडल किया है। जब डंडे नहीं मारने, जब गोलियां नहीं मारनी होती तब वो डंडे गोलियां मार रहे होते हैं, जैसा मॉडल टाउन वाले वाक्य में हुआ था, और जब कंट्रोल करना होता है तब वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहे होते, पीछे बैठे होते हैं। जो पीटीवी के ऊपर हुआ था ये बहुत बड़ी डिस्ग्रेस की बात है, बहुत बड़ी डिस्ग्रेस की बात है कि पूरी दुनिया की मीडिया ने देख लिया कि जो स्टेट रन टेलीविज़न है उसके तमाम चैनल्स डाउन हो गए हैं और अंदर जो है वो बस वो लोग मुजाहरीन घुसे हुए हैं और मुल्क का अवाम का कोई इख्तियार ही नहीं है। हमने आर्मी के चंद सिपाही बुलाए हैं, एक मेजर है जो भी वो था वो आया है, और उसके भी उन्होंने ये नहीं कि मार मार के निकाले, बस अनाउंसमेंट किया कि आप लोग जाएँ जाएँ, देखिए बुरी बात जाएँ जाएँ यहाँ से निकले, आप लोग गंदी बात इस तरह नहीं करते, अच्छे बच्चे ये काम करते हैं, उस तरह कह के बस निकाले उन्हें, कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इस कदर झूठे बंदे हैं ये इमरान खान और ताहिर कादरी, हमारा कोई बंदा नहीं वहाँ पे गया था, वही वो कौन बंदे थे फिर, और फिर वो और कौन बंदे थे जो उधर गए थे, और ताहिर कादरी कह रहे हमारे बंदों ने निकाला है उसे। लेकिन ये असल में ये लोग इतने बेइज्जती प्रूफ होते हैं ना कि इनकी जितनी मर्जी बेइज्जती की जाए इनको कोई असर नहीं होता, इनको कुछ फील नहीं होता कि इनकी बेइज्जती हो रही है। और ये गालिबन ये सियासतदान जितने भी होते हैं ये उनकी क्वालिटी होती है कि ये बेइज्जती प्रूफ होते हैं। तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने तो बहुत बुरा रोल प्ले किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे मीडिया जो है उसका भी ये कसूर है कि हाइप खाम खा के हाइप क्रिएट करते हैं। न्यूज़ चैनल जब स्टार्ट होते हैं या जो खबरें होती हैं, देखें ये हमारा जो चैनल है समा चैनल हो गया, वो ARY हो गया या जियो हो गया, जितने भी चैनल्स हैं दुनिया हो गया, जितने भी हैं, नाम में नहीं भी ले रहा अगर मैं, ये नहीं मतलब आज भी हो गया, आज चैनल हो गया, जितने भी चैनल्स हैं तो वहाँ पर कहते हैं, और ये देखिए अब हमारी जो लाइव ट्रांसमिशन आपको चल रही थी पिछले 21 दिन से अब वो 22वें दिन में दाखिल हो गई है, वो 24 आवर्स हम आपको कवरेज दे रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा आपने हाइप क्यों क्रिएट की हुई है इस चीज़ की? लाइव जब इमरान खान बोल रहा होगा, ताहिर कादरी बोल रहे होंगे, लाइव दिखा रहे होंगे उस चीज़ को, इस कदर अब एयर टाइम क्यों दे रहे हैं उनकी फजूल की बातों को? फजूल की बातें उनकी, कोई नई बात उन्होंने की है उसके अंदर? जो तमाम बातें हैं उसके अंदर कोई नई बात हुई है? फजूल की बातें वही बस बुरा भला कह रहे हैं, गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो पढ़े लिखे बंदे को भी जेब नहीं देती। एक तरफ ताहिर कादरी की तो खैर बात ही नहीं हम करते, वो तो बंदा है ही सिरे से कॉन्ट्रोवर्शियल बंदा है, लेकिन इमरान खान भी एक ही जुमले के अंदर पहला जुमला स्टार्ट करेगा, अल्लाह कहता है कुरान के अंदर ये, अगली जुमले के अंदर फिर वही गंदी लैंग्वेज की तरफ आ जाएगा, बदतमीजी की तरफ आ जाएगा। ना तो ये लगता है कि इस बंदे को कोई दीन की बात कोई हजम हुई है ज़्यादा, और ना ये कि जो ऑक्सफर्ड का पढ़ा हुआ है तो उससे कोई असर हुआ है इस चीज़ के। और आप खुद सोचें कि जितना बुरा भला कहा है, अब इस्तीफा तो नहीं दिया ना, अब किस मुंह से जाके पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे, किस मुंह से जाके पार्लियामेंट में जाके दोबारा बैठे हुए होंगे? लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ ये बेइज्जती प्रूफ होते हैं लोग, इनको नहीं फर्क ज़्यादा फर्क पड़ता, इनको शेम शेम भी कहता रहे जो मर्जी कहता रहे, ये शेम शेम फील नहीं करते। मीडिया के इसके अंदर बहुत ये रोल जरूर था कि 24 आवर कवरेज नहीं देनी चाहिए थी इस चीज़ को, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। हमने परवाही नहीं की कि गजा के अंदर इसराइल क्या कर रहा है, हमने परवाही नहीं की कि सीरिया इराक और इलाकों के अंदर क्या हो रहा है, सोमालिया के ऊपर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो इवन ये भी नहीं पता। हम आप लोगों से अगर मैं कहूँ ना नक्शा खोल के दिखाऊँ और मुल्कों के नाम हटा दूँ, सोमालिया होता किधर है? अब वो ये भी नहीं पता होगा सोमालिया किधर है जिसके ऊपर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, मुस्लिम कंट्री के ऊपर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, वो भी नहीं पता होगा। तो एक तरफ बिल्कुल एक धुन में लगा दिया पूरे मीडिया ने हर चीज़ को, मीडिया का बहुत नेगेटिव रोल रहा है। प्रॉब्ली जो भी साजिश थी, जो कुछ भी था इसके पीछे या जो भी प्लानिंग थी इसके पीछे, एक बंदे ने जाना जो बचाया ना आके, वो जावेद हाशमी था, उसकी वजह से बचत हो गई है, वरना तो जो भी साजिश थी ना, जो भी प्लान था उसके मुताबिक हो जाना था। कुछ क्वेश्चन मार्क्स जो थे वो हमेशा से चलते आए हैं, मिसाल के तौर पर ये कि PTI की और PAT ने एक साथ क्यों स्टार्ट किया, लाहौर इसे क्यों स्टार्ट किया, इमरान खान की पार्टी लाहौर बेस्ड है कोई, उसने लाहौर से क्यों स्टार्ट किया, ताहिर कादरी ने लाहौर से क्यों स्टार्ट किया, ठीक है उनका मनाज कुरान है वहाँ से, एक ही डेट पे क्यों स्टार्ट किया, एक ही आगे पीछे वेन्यू क्यों हुए, ये सवाल थ्रू आउट चलते आ रहे और एंड में जाके बिल्कुल उन्होंने जाके एक दूसरे को जफ्फी भी डाल दी, ये बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं, ये फलाने हैं, ये उस तरह हैं। ये जो जो कुछ भी उन्होंने किया है ना, ये देखें ये हुआ है जावेद हाशमी के कहने के बाद, कि जावेद हाशमी ने कहा था कि इमरान खान ने कहा था कि हमने पैट के साथ मिलकर चलना है, ये करना है, वो सब कुछ हुआ है बाद में जाके, उसकी बातें भी प्रूव हुई हैं। उसके बारे में जो इल्ज़ाम लगाए गए थे कि ये नून लीग के लिए हमेशा इसने सॉफ्ट कॉर्नर रखा था, इसने बगावत किया है, इसने फलाना किया है, उसने वो इल्ज़ाम भी धो दिए जब वो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आके नवाज शरीफ की अच्छी बेइज्जती की है और डिज़र्व करता है नवाज शरीफ ये बेइज्जती, बाकियों ने भी अच्छी बेइज्जती की है, एतजाज हसन ने भी बड़ी प्यारी अच्छी बेइज्जती की है, अच्छी तरह उसको बुरा भला भी कहा है, सिस्टम को सपोर्ट किया है जो कि बिल्कुल ठीक कहा उन सब ने, जावेद हाशमी ने भी ये कह के इस्तीफ़ा भी दे दिया है। तमाम पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, इवन इमरान खान से भी ज़्यादा कमिटमेंट उसने शो किया है कि क्योंकि मैंने कह दिया था मैं इस्तीफ़ा दूंगा इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। नवाज शरीफ को क्योंकि उसने बुरा कबला कह दिया है, कुछ सवाल पैदा नहीं होता कि वो नून लीग में जाएगा, और कहा उसने ये है कि मैं पीटीआई का मुंतखब सदर हूँ, तो पीटीआई की तरफ ही उसने अपनी एफिलिएशन शो की है। तो आप यूँ इन अदर वर्ड्स यूँ समझें कि जो उंगलियाँ उठाई जा रही थी ना उस बंदे के ऊपर, वो उसने तमाम के तमाम जो है ना उन एलिगेशन को अपने उस दिन वाले पार्लियामेंट की प्रेजेंस वाले दिन तमाम चीज़ों को क्लियर आउट किया है कि अगर उसके और मफादात होते उसके पीछे तो वो तमाम चीज़ें उसने उस दिन गलत कर दी हैं सारी की सारी आके, और अपने आगे पॉलिटिकल करियर के ऊपर भी जो है अच्छी तरह लात मार दी है। फिर जो दूसरी बात की थी कि इमरान खान ने हमेशा जो अपनी तकरीरों के अंदर कहा है थर्ड अम्पायर और तालुकादी के भी जो मुतालबात थे कि मैं मुतालबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को और आर्मी को, ये भी हो सकता है कि कोई आर्मी का रोल ना हो, ये भी हो सकता है कि आर्मी का रोल हो, ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल ना हो, ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का रोल हो, ये तमाम बातें। तो वो ये है ना कि जब 10 बंदे आपके सामने हैं और आपको पता है कि 10 के 10 झूठे हैं तो किस बंदे की बात का यकीन करेंगे आपके, इनमें से कौन जो है वो कम झूठ बोल रहा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मिसाल के तौर पर कि जब आर्मी चीफ ने बुलाया था इमरान खान को ताहिल कादरी को, अपनी तकरीरें छोड़ के फ़ौरन पहुँचे हैं वहाँ पर, कोई ये नहीं कहा कि अभी हम लोग सोचेंगे, हम अपनी कोर कमेटी से पहले मशवरा करेंगे, वो फ़ौरन पहुँचे हैं। इवन आपको पता है कि उसी दिन वो मेन दिन था जिस दिन जावेद हाशमी ज़्यादा नाराज़ हुआ था इमरान खान से कि ये आपने क्या किया और मुल्तान चला गया था, कि आपने आर्मी के पास आप क्यों गए हैं और उसको क्यों मीडिएटर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये तमाम इशारे ज़रूर हैं कि हाँ कोई बात ज़रूर थी। 2011 के समर तक इमरान खान की पार्टी क्या थी, 2008 के इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, अपने कागजात खुद फाड़ दिए, कोई हाल नहीं था। पार्टी जो है इमरान खान का पहले क्या हाल चलता आ रहा है, जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन में हिस्सा लिया था तो आपको पता है 6 जगहों से खड़ा हुआ था इमरान खान, 97 के इलेक्शन जो होते हैं 6 सीटों पर खड़ा हुआ था, एक सीट भी नहीं जीता था। फिर जब 2002 के इलेक्शन हुए थे तो उन तमाम के अंदर भी इस्लामाबाद से भी खड़ा हुआ, कहाँ कहाँ से खड़ा हुआ था, सिर्फ एक जगह से जीता था, अपनी जगह से मियाँ वाली, एक ही सीट थी बस। 2018 में हिस्सा ही नहीं लिया, अपने नॉमिनेशन पेपर ही फाड़ दिया, लेकिन अगर हिस्सा ले भी लेता तो 5-6 सीटें हो जाती ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत हद हो गई थी। 2011 समर तक पार्टी कोई पार्टी नहीं थी, बल्कि इमरान खान का लेवल क्या था कि जिस तरह वो उन्होंने आम लोगों को बुलाया होता है, ये पार्टी के फलाने MNA या फलाने जो छोटे छोटे लेवल के होते थे उन लोगों के साथ आके टॉक शोज में बैठा होता था, ये इमरान खान का तब लेवल था। पार्टी के अंदर हम किसी बंदे को और नहीं जानते थे, और पार्टी के अंदर और लोग कौन कौन से हैं इसकी पार्टी में। 2011 के जो उसका जलसा हुआ था लाहौर वाला, पता ही होगा जिसमें आया था कि खबरों में कि 2 लाख से ज़्यादा बंदा आया उस जलसे के अंदर, और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर जलसा किया था, बहुत पॉपुलैरिटी गेन की थी। अभी इलेक्शन में टाइम था, ज़रूर टाइम था तब वो। 2012 के अंदर जो इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी की हेड कर रही जो शीरी मजारी, उसने 2012 में इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़ा क्यों दिया था, अगर आप में से किसी ने वो नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लें, मैंने ट्विटर के ऊपर भी उसको शेयर किया हुआ है। 2012 में उसने जो इस्तीफ़ा दिया था उसने कहा था, उसने एक वर्ड यूज़ किया हुआ था डबल कोट्स के अंदर, बिग मनी, उसने बिग मनी की वजह से उसने कहा था कि मैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट में कर रही हूँ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिग मनी इन PTI। अब उसने एलैबोरेट नहीं किया था, लेकिन क्योंकि उसके बारे में वो इमरान खान ने खुद ही कहा था कि अच्छा है कि इस तरह से पता लग जाता है कि कौन लोग हमारे साथ देने वाले हैं और कौन लोग जो हैं वो, जिसने अभी दोबारा कहा है कौन मुश्किल बात में साथ देते हैं और कौन फस्ती बटेरे हैं। तो इसी तरह तब इमरान खान और PTI की तरफ से, शायद इमरान खान के अपने वर्ड नहीं थे लेकिन PTI के ऑफिशियल ये आई थी शीर मजारी के बारे में कि हाँ अच्छी बात है कि इस तरह फिल्टर हो गया, पीटीआई जो है वो अपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकल रही है, जो अच्छे लोग हैं वही आगे आएंगे। तो बिग मनी की जो बात हुई थी उसने जो की थी हाईलाइट किया था कि इसके प्रोटेस्ट में जो है मैंने पार्टी सीट छोड़ दी है कि अब तरीके साहब अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और क्लेरिफिकेशन देने के लिए उसने फिर उसको पब्लिश कर दिया था अपने लेटर को। वो मेरा नहीं ख्याल किसी अखबार में आया था, लेकिन वो उसका अपना जो ब्लॉग है उसके ऊपर उसने उसको पोस्ट कर दिया था अपने इस रेजिग्नेशन को। उसने डॉक्टर है, पीएचडी है, कोई छोटी हैसियत नहीं है ऐसा, यानी ये नहीं कह सकते कि ऐसे जो बाकी एमएलए की इतना अनपढ़ जाली डिग्रियों वाले हैं। उसने रिज़ाइन दे दिया था। फिर उसके बाद ये जो 2012 के एंड के अंदर और 2013 के शुरू तक, दिसंबर 2012 और जनवरी 2013 में जो तहिल कादरी का आना हुआ था, वो धरना हुआ था, जो चले गए थे, श्री मजारी ने एक आर्टिकल लिखा था 2013 के शुरू के अंदर, और उसके अंदर उसने अपने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे कि तहिल कादरी के इस चीज़ के पीछे कौन हो सकता है। और उसने ये लिखा हुआ उस आर्टिकल के अंदर जो कि द न्यूज़ में शाया हुआ था कि तहिल कादरी जो है इसका आना इस टाइम के ऊपर, ये मेरे पास प्रूफ्स तो नहीं है लेकिन इसके पीछे बाहर की कॉन्स्पिरेसी है, बाहर की तरफ से इसको फीड इन किया गया। वो फिर जारी बात है श्री मजारी वापस पीटीआई में आ गई, और जिस तरह होता है हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस कर लेते हैं कि अपने मफाद के पीछे या किसी और चीज़ के पीछे अपनी बात को सेकेंड नहीं करते और अपनी बात पर कायम नहीं रहते, अपनी बात पर नहीं कायम रहते। ये बात मुसलमानों की क्वालिटी होनी चाहिए, है, होनी चाहिए, होती थी, होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इस चीज़ को मिस कर दिया, हम इस चीज़ को खो बैठे हैं। वो क्या है कि मैं जो लफ्ज़ अपने मुँह से अदा करूँ ना, मैं उसकी बहुत टेंशन लूँ, मैं उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन लूँ कि जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया ना अपने मुँह से, मैंने इसके मुताबिक लिव अप करना है अब। और अगर मैंने इसमें झूठा निकल आया तो मैं उसके बारे में या तो शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगूँ, या क्लेरिफिकेशन दूँ। ठीक है, बंदे की राय चेंज हो सकती है विद टाइम, लेकिन उस बारे के अंदर बंदे को अपनी बातों के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि जितना एक तो ये बेस्ती प्रूफ वाला साहब हो गया, या जितना मैं बता रहा हूँ कि दुनिया के जितने भी इदारों के या जितने भी मुल्कों के स्पोक्स पर्सन होते हैं वो सब के सब झूठे होते हैं। एक काम हो रहा था, खबर आ गई, उसके चाइना के बिलफर चाइना के स्पोक्स मैन ने कह दिया कि ये सब साजिश है हमारे खिलाफ, बाद में वही बात सच्ची हो जाती है, बाद में उसी के हक में बोल रहे होते हैं कि हाँ जी इस तरह हुआ था। जितने भी स्पोक्स पर्सन होते हैं कि होते ही झूठे हैं, ये हमारा निज़ाम इस तरह का चल रहा है। तो बाहर श्री मजारी वापस आ गई थी। तो ये आर्टिकल जो है श्री मजारी वाला, ये मैंने पढ़ा नहीं था, ये तो अभी रिसेंटली जंग के अंदर सलीम साफ़ी ने अपना आर्टिकल लिखा था, धरने के असल हदफ क्या है। मैंने राइटर को इतना पढ़ा नहीं हुआ। इनफैक्ट सच्ची बात यह है कि मैं डे टू डे पैटी मैटर्स के जर्नलिज्म की चीज़ों के अंदर मैं पढ़ता ही नहीं, मैं टीवी नहीं देखता रोज़ाना, मैं खबरें नहीं पढ़ता, यानी कि इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली अगर एक थीम समझ लग गई है ज़रूर कि दुनिया जा किस रुख पे रही है और हो क्या रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन पैटी खबरें नहीं पढ़ता, इसलिए इनके रोज़ाना के जो अखबारों में आर्टिकल्स आ रहे होते हैं वो चीज़ें मैं नहीं पढ़ रहा होता। ख़ास तौर पर एक तो पहले भी राय यही थी, और ख़ास तौर पर वो जो हुआ था कि मलिक रियाज का वो जो इंटरव्यू लीक हो गया था कि पीछे क्या बातें हो रही थी, और ये मुबशर गुमान जो उस टाइम बहुत ज़्यादा बना हुआ है AIY के ऊपर गवर्नमेंट के खिलाफ, इन लोगों की क्या हैसियत थी, इन लोगों का सब कुछ एक्सपोज हो गया था, इन लोगों को शर्म ही नहीं आती कि ये लोग आवाम को आगे से किस तरह फेस करेंगे। और इस कदर बदतमीज़ी वाले तरीके AIY, जिस तरह मैंने मिसाल के तौर पर दो दिन पहले देख रहा था, अब वो मुबशर गुमान क्या बातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ खाने में क्या खाते हैं। देखें ये बंदा इंसान हो सकता है कि जो बंदा जो है एक वक्त में 6 खाने पकवा रहा हो, इतने मीठे होते हैं, इतने ये होते हैं, भाई आपको क्या तकलीफ़ है। जर्नलिज्म का असूल ये होता है कि आपने अनबायस्ड होकर बातें करनी है। अब मैं किस जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ, इस्लामी जर्नलिज्म नहीं, जर्नलिज्म जो जिसको सब फॉलो कर रहे होते हैं, जो अमेरिका की पढ़ाई भी पट्टी है, वो जर्नलिज्म क्या होता है कि चाहे मेरी अपनी फीलिंग्स क्यों ना अटैच्ड हों एक खास इशू के साथ, मैंने उस मामले के अंदर बिल्कुल अनबायस्ड होना है। ये अनबायस्डनेस है। ये जो कुछ भी पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है इसका एक नुकसान ये हुआ है कि हमारे जो मीडिया है वो पोलराइज हो गया है। एक इंतहा पे AIY जैसे चैनल्स हैं, एक इंतहा के ऊपर जियो जैसे चैनल्स हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट, बल्कि गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट नहीं कहना चाहिए, एंटी इमरान खान कहना चाहिए, वो एंटी इमरान खान हुए हैं बहुत ज़्यादा। और जो AIY हो गया और इस जैसे चैनल्स हैं, मेजोरिटी चैनल्स वही थे, वो बिल्कुल प्रो इमरान खान, और उनको देख के लगता है कि बस अभी इनकलाब आ गया। जिस तरह मैं कह रहा था कि जावेद हाशमी के ऊपर ये क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है कि उसने एक ऐसा रोल अदा किया है कि जिसकी वजह से आप देखें अगले दिन आर्मी की तरफ से अब कोई मीडिएशन का रोल भी नहीं अदा किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ क्लेरिफिकेशन हमारा कोई रोल नहीं है। आई एस आई जो है वो गैर सियासी इदारा है, गैर सियासी इदारा है। आई एस आई का इसमें कोई रोल नहीं है, आर्मी का कोई रोल नहीं है, आर्मी चीफ ने कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस ने जो सुनना था, केस सुनना था, उसमें वो बातें, उसकी सिर्फ खबर ये आती नहीं कि चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि भाई मैं इमरान खान से कभी नहीं मिला, बस मैं एक दफ़ा ही मिला था, उसके बाद मैं कभी मुलाकात नहीं हुई, मेरा किसी सियासी उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई कॉन्स्परेसी थी भी ना, वो सब बैकफुट पर चले गए, क्योंकि अगर ये फिर भी लाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है फिंगर ज़्यादा पॉइंट आउट होनी थी। अब आगे की बात यह है कि नया पाकिस्तान तो नहीं बनाना फिर। अब जो पाकिस्तान हमारा है, इसके अंदर हम लोगों को क्या करना चाहिए? वो जो 6 नुकात थे उनका ऑर्डर चेंज करके वो बहुत अच्छी सजेशंस थी। पहले भी मान ली जाती मुल्क का नुकसान ना होता, जो बाहर श्रीलंका का एक दौरा जो होना था, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने दौरा करना था, वो मुलतवी ना होता, बल्कि कैंसिल हो गया। वो तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो दौरा है वो अगर डिले हो गया, वो डिले ना होता, पहले मान लेते ना इतना ज़्यादा नुकसान होता। कल ही एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उनकी जॉब ख़त्म हो गई है धरने की वजह से, कंपनी में क्राइसिस आ गए, काम चल नहीं रहा था तो उन्होंने फायर कर दिया। ये तो खैर एक छोटी सी एग्जांपल है, वरना कितने लोगों की जो है ना प्रॉब्लम्स आई होंगी इसकी वजह से, इन्होंने किया है। एस्टिमेट तो वैसे देते हैं कि इतने अरब का नुकसान हो गया, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारा डॉलर का जो रेट था वो 98 के ऊपर था, वो 102 103 तक भी चला गया था, फिर थोड़ा सा दोबारा अब क्योंकि पता लग गया कि अब कोई नया पाकिस्तान नहीं आ रहा, वापस 101 तक पहुँच गया। इन चीज़ों का बहुत दूर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं, ये कोई आसान काम नहीं होता कि हम लोगों का अगर करेंसी इतनी गिर गई है तो दोबारा जो है वो अब आराम से चढ़ जाएगी। इसका नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन चलें फिर भी अभी भी खैर वो ज़िद्दी हुए हैं कि हमने ये करना है और अड़े हुए हैं अभी भी अपनी बातों के ऊपर। ताहिल कादरी ने तो चले जाना कैनेडा, और ताहिल कादरी के तो एम्बिशंस ही कुछ और हैं। अगर आप बल्कि ताहिल कादरी की कभी आप स्पीचेस पढ़ें, जो कि सलीम साफ़ी ने भी बात की थी, लेकिन उस चीज़ को एटलीस्ट मैंने पहले भी फॉलो किया हुआ था, ताहिल कादरी की इंटरनेशनल स्केल के ऊपर आप खुद बताएं क्या हैसियत होगी, इंटरनेशनल स्केल पर क्या हैसियत होगी। लेकिन उसके यूरोप की कितने दौरे हुए हैं, उसको कि इतने टीवी चैनल्स ने बुलाया, ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर, फलाने लॉ के ऊपर आप आए, उसने अपनी किताब लिखी, तालिबान और इन तमाम को खवारिज करार दिया। खवारिज वो थे जिनके ख़िलाफ़ हज़रत अली ने जहाद किया था, और खवारिज को आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कॉल किया है कि खवारिज जो हैं दीन से खारिज हो गए थे, इसलिए इनका नाम खवारिज रखा गया था, जिसकी पेशन गोई भी रसूल सल्लम की हदीसों में मौजूद है। वो टाइटल दे दिया तालिबान को। मैं एजेंट्स की बात नहीं कर रहा, इंडियन एजेंट्स या जो बाकी और ज़राए से आ गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ओरिजिनल तालिबान जिनको हम कहते हैं, उनको ख़ारिज करा दे दिया, प्रो वेस्ट अपने बातें की, और उनकी फ्री बुक्स जो थी वो भी छापी गई और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट की गई। इतने दौरे लग रहे हैं कैनेडा के अंदर भी, उनको नेशनैलिटी भी मिल गई, वो इतने फेवर्स क्यों उनको मिल रहे थे, इतने फेवर्स उनको क्यों मिले? वो उस बंदे के पीछे कॉन्स्परेसी का होना मुझे कोई शक नहीं है। इमरान खान के पीछे कॉन्स्परेसी का होना, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान जो है वो एंटी पाकिस्तान है, मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान के पीछे बिलफर्ज अगर कॉन्स्परेसी थी, बिलफर्ज कॉन्स्परेसी थी, जिस तरह की जावेद हाशमी ने कहा कि कॉन्स्परेसी थी इमरान खान के पीछे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान अपॉर्चुनिस्ट ज़रूर था। उसने को सब बार दिखाए गए कि आपने प्राइम मिनिस्टर आप बन सकते हैं, वो उस लालच में ज़रूर आया होगा, वो मतलब एंटी पाकिस्तान नहीं है वो, लेकिन वो लालच में ज़रूर आ गया होगा, अगर कॉन्स्परेसी थी भी कि मुझे इसके ज़रिए ये मिल सकता है, इकतदार मिल सकता, जो कि नहीं मिल सकता था। और अभी भी अगर इलेक्शन होते हैं ना तो इमरान खान ने पहले से ज़्यादा बुरी तरह हार रहे हैं, इवन उसके अपने सूबे के अंदर लोग अब खुश नहीं हैं, अभी तक अपने जो है ना फजूल ज़िद के ऊपर अड़े हुए हैं। अगर वो 6 नुकात मान लेते हैं, गवर्नमेंट से मुआहदा हो जाता है, इमरान खान के फेस सेविंग भी हो जाएगी, ताहिल कादरी की फेस सेविंग ना भी हो तो खैर है, इमरान खान की फेस सेविंग भी हो जाएगी, वो सिस्टम में भी रहेगा, और इमरान खान जैसे बंदे का सिस्टम में होना ज़रूरी है। अगर वो बंदा नॉकआउट हो गया तो फिर जिन चीज़ों के बारे में वो बयान दिए जा रहे हैं वो लोग और ज़्यादा सर चढ़ जाएंगे। फिर एटलीस्ट ये बात तो पता है ना कि वो बंदा टैक्स देता है, जो बंदा खुद टैक्स देता है ना वो कहता है कि तुम क्यों नहीं टैक्स देते। फिर जिस तरह इंटरव्यू इलेक्शन के दिनों में उसका हो रहा था, एक तो एक एंकर पर्सन ने उससे पूछा था एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कि इमरान खान साहब आपने कितना टैक्स जमा कराया, तो उसने कहा 18 लाख। अब 18 लाख का मतलब ये है कि इमरान खान ने अपने एसेट ठीक डिक्लेयर किए होंगे, उतना अमीर बंदा कि 18 लाख टैक्स होगा, ज़रूर होगा। ऐसा बंदा अगर टैक्स देता है तो फिर उसको कोई तकलीफ नहीं होती कि वो दूसरों को रगड़ सकता है खूब, तुम क्यों नहीं टैक्स देते, और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा उठा सकता है, उठना चाहिए, टैक्सेस का मामला ठीक होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर वो हट गया सिस्टम से, बिल्कुल ही फेल हो जाता है, अगर अभी तक ज़िद पर अड़ा रहा, फिर तो ये नवाज शरीफ और ऐसे जज़दारी फैमिली है, भुट्टो फैमिली है, जो कुछ भी है, इनको ज़्यादा ज़्यादा सर चढ़ जाएंगे ये, फिर तो ये बिल्कुल भी काबू नहीं आएंगे। सिस्टम में रहना ज़रूरी है। बाकी उन छः नुकात के अलावा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बेकार तरीन इदारा है ना, बेकार तरीन इदारा है, और जिसके बारे में सीरियसली उसको ए टू जेड चेंज होना चाहिए उसे, वो मैं ये समझता हूँ कि वो जुडिशरी का इदारा है। किसी किस्म का फैसला नहीं कर पाते ये, बस तारीखों पे तारीखें चल रही होती हैं, ना कोई छोटे पैटी मैटर्स हों आपके, अगर कोई विरासत का मसला है ना उसका फैसला होता है, ना तलाक दे पाता है ये कोर्ट, ना ये कोर्ट जो है ये बड़े से बड़े जो फैसले होते हैं, जैसे मुल्क के फैसले हो गए, ये आईन और कॉन्स्टिट्यूशन और ये फलाने बातें, इनका फैसला हो पाएगा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, आप बताएं कि कितने सुमोटो एक्शन लिए थे, किसका फैसला हुआ था, एक केस का भी फैसला नहीं करके गया, एक केस का फैसला नहीं हुआ था। ये इस कदर बेकार तरीन वेस्टेज ऑफ टाइम इदारा है ये जुडिशरी का। ये सिस्टम जो है ये मैं समझता हूँ सीरियसली चेंज होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, इंसाफ और वो तमाम बातें जो हैं उनमें से कुछ नहीं मिलने वाला जब तक ये सिस्टम नहीं चेंज होता। और जो काजी सिस्टम होता था इस्लाम के अंदर, वो सिस्टम जो है वो ज़रूर किसी ना किसी तरह से इंट्रोड्यूस होना चाहिए। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनके अंदर करंट जुडिशल सिस्टम की चंद चीज़ें ली जा सकती हैं। अभी क्या होता है, आपका कोई केस था, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप क्या करेंगे, आप वकील रखेंगे अपना, उसकी फीसें भरते रहेंगे आप, जितना महंगा वकील होगा उतना अच्छा होगा। महंगे का मतलब ये नहीं है कि ईमानदार होगा वो, महंगे का मतलब यह है कि वो आपको केस जीत के दे सकता है। किस तरह जीत के देगा, बाय हुक और बाय क्रुक। उसका आगे मार्केटिंग, उसकी आगे जो फ्यूचर के जो प्रोफाइल है वो उस पर लगती है कि मेरा केस अगर मैं हार ना जाऊँ। उसने हर अप्रोच मानी है हर तरीके से करने के लिए। इस्लाम के अंदर काजी सिस्टम क्या होता था, आपका जो मसला है आप आएँ, आपके साथ मसला है आप जाएँ, दोनों काजी के सामने हों, काजी जो है दोनों से क्वेश्चन पूछेगा या जो मर्जी गवाह लाना चाहे ला के वो फैसला कर लेगा। वकील नहीं आएगा बीच में, वकील पट्टी भी नहीं पढ़ाएगा। आप खुद सोचें अगर ये मामला हो जाए, हमारे केसेस बहुत जल्दी हल होना शुरू हो जाए। और हमारे यहाँ ये भी होता है कि झूठे गवाह जो होते हैं वो अगर उनकी झूठा होना साबित हो भी जाए उनकी गवाही फिर भी चलती रहती है अगले केसेस में। इस्लाम के अंदर ये कानून है ही नहीं। इस्लाम के अंदर ये है कि जो बंदा झूठा साबित हो जाए, इसने फलाने बंदे के ऊपर तोहमत लगाई थी, अगर जो तोहमत थी तो आपको पता है कि 80 कोड़े पड़ते हैं, इतनी सख्त सज़ा है, और फिर लाइफ बैन लग जाता है कि अब इसकी कभी किसी किस्म की कोई गवाही नहीं मानी जाएगी, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है इस बंदे की। अगर ये लॉ आ जाए तो बहुत खैर फैल सकती है। काजी सिस्टम आना चाहिए। हाँ, कुछ लॉज ऐसे हैं जिनके अंदर रहते हुए अगर वकला हों तो कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके एसेट्स इस फॉर्म में भी हैं, उस फॉर्म में भी हैं, उसके स्टॉक्स भी हैं, कुछ भी है, फलाना चीज़ भी है, उसके गवर्नमेंट के साथ टैक्सेस का मामला चल रहा है कि उसने टैक्स कम जमा कराए थे, ज़्यादा जमा कराए थे। अब वो मैथमेटिकल लंबी लंबी कैलकुलेशन होती हैं। हाँ, उसके अंदर अगर आपके कोई एजेंट्स या आपके जो लॉयर्स हैं वो केस लड़ रहे हैं, जो कॉर्पोरेट लॉ जिसे कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जिसे कहते हैं, उसके अंदर बेशक ये वकीलों वाला सिस्टम चलता रहे, लेकिन जो फैमिली लॉज, इनहेरिटेंस लॉज और इस तरह के जो सोशल सिस्टम से ताल्लुक है उनके अंदर लाजमन हमें एक रेवोल्यूशन चाहिए। इसके अंदर जुडिशरी सिस्टम के अंदर हमें लाजमन चाहिए। इलेक्शन के अंदर जो बातें कर रहे थे कि धांधली को रोकने के लिए आइंदा क्या क्या होना चाहिए, वो तमाम बातें ठीक हैं, अल्लाह करे वो नाफिस हो जाए मुल्क के अंदर, और हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट पावरफुल इदारा हो जाए, उसके पास अथॉरिटी भी हो कि वो किसी को अगर कह दे कि ये बंदा जो है इसके पेपर्स नल एंड वॉइड हो गए हैं, तो ना गवर्नमेंट उस पर प्रेशराइज कर सके ना कोई और, एक इंडिपेंडेंट इदारा हो, पावरफुल इदारा। अलबत्ता एक और काम ज़रूर होना चाहिए हमारे इलेक्शन के अंदर जो जिसकी बातें नहीं हो रही, वो ये है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक सीट से खड़ा हो सकता है। ये क्या बात है, नवाज शरीफ दो दो सीटों से खड़ा हो रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब तीन तीन जगहों से खड़े हो रहे हैं, दो जगह से हार के एक जीत के फिर भी पार्लियामेंट पहुँच गए। बंदा एक जगह से सिर्फ खड़ा हो सकता है, बस हार गया तो हार गया, बस गया वो। अब ये नहीं कि इमरान खान तीन जगहों से खड़ा हुआ, पेशावर से भी, पिंडी से भी और मियांवाली से भी, अब उसके अंदर वो जीता, अब उसने दो जगह छोड़ दी वापस, अब वो पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है दोबारा री इलेक्शन दोबारा उन चीज़ों के ऊपर। बंदा एक जगह से खड़ा हो सकता है, नॉकआउट हो गया तो हो गया, फिर बंदा खुद ही एक ही वहीं से खड़ा होया करेगा जहाँ पर वो समझता है कि मैं कोई अच्छा काम करूँगा और मेरे पास भागने का चारा नहीं है। ये काम ज़रूर होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जो अमेरिका के अंदर सिस्टम है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, वो ज़्यादा अच्छा सिस्टम है इस एतबार से कि हमारे यहाँ जब भी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, अब उन्होंने वाटर मिनिस्टर लगाना है, उन्होंने बिजली का मिनिस्टर लगाना है, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर लगाना है, उन्होंने लगाना है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वो क्या करते हैं जो जीते हुए होते हैं उन्हीं में से जो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं उन्हीं को मुख्त जगहों पर घुसेड़ देते हैं। एक ही बंदा जो है, जैसे मिसाल के तौर पर मुशर्रफ दौर के अंदर शेख रशीद जो था वो पहले था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और वो बिल्कुल ठीक था, कितना झूठ बोल सकता है वो बंदा, बिल्कुल ठीक था, वो अपने सही जगह पे बैठा हुआ था। बाद में रीशफलिंग हुई, उसको रेलवे का मिनिस्टर लगा दिया गया। भाई कुछ कैसे सर पैर है इसके बीच में, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जिसने मीडिया को कंट्रोल करना है और जिसने रेलवे को चलाना है, इनमें क्या ताल्लुक है आपस में? अमेरिका के अंदर क्या होता है कि इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के लिए, ये नहीं होगा कि मेरे हल्के में ये बंदा खड़ा हो रहा है, मेरे हल्के में ये बंदा खड़ा हो रहा है। मुल्क के ऊपर खड़े होंगे इमरान खान, नवाज शरीफ, जो जो बंदे हैं ये खड़े होंगे, मुल्क इसको वोट देगा। इनमें से जो जीत गया उसके पास अब पावर होगी कि वो अब जो मर्जी अपनी कैबिनेट बना ले, जहां मर्जी से बंदा उठा के ले आए, जैसे उसके वहां पे जो एडवाइजर्स और उनके जो मिनिस्टर्स वहां पे होते हैं वो लाजमी नहीं होते कि वो इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इसका फ़ायदा क्या होता है? अगर तो सिस्टम ठीक है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो फील्ड का बंदा लाएंगे, जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा वो एजुकेटेड बंदा ही होगा, फिर इसका एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक था, क्या पता वो किसी यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर रह चुका हो, चांसलर हो, उसका एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक होगा, वो भी सही तरह से अपनी फील्ड को लेकर चल सकते आगे, ना कहे कि बीच में जो मर्जी शफलिंग कर लें। ठीक है, इसका नुकसान भी है, नुकसान ये है इसका कि बिलफर्ज अगर करप्ट निज़ाम है आपका और नवाज शरीफ जैसी साइकी ही होगी तो वो किसको भी लेके आएगा, जो इलेक्शन में नहीं भी जीते ना उन खानदान वालों को भी उठा के ले आएगा अपने, और अपनी फूफी ताइयों और तमाम को जमा कर लेगा कि ये भी आ जाएंगे, ये मिनिस्टर फलाना है, ये मिनिस्टर फलाना है। इसका नुकसान भी है इसका, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा ओवर वेट करता है, जबकि अब थोड़ी पोलिटिकल मेच्योरिटी की तरफ जाया जा रहा है। तो टैक्सेशन की मैं बात करूँ, टैक्सेशन के ऊपर 7 किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए, काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म की। 2 लॉज ऐसे चल रहे हैं, आईटी जो है, आईटी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रोल अदा कर सकता है, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो बहुत सारी करप्शन इससे रोकी जा सकती है। और 2 प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं जो कि नादरा के अंदर आएंगे, लेकिन उसको गवर्नमेंट्स, मुख्तलिफ गवर्नमेंट, सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, पिछली गवर्नमेंट भी, ये गवर्नमेंट भी, और एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी स्टेटस को का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है इमरान खान, वो तमाम लोग जो हैं वो उसको रोक रहे हैं। वो क्या है, जितने भी बैंक अकाउंट्स होंगे वो आपके CNIC के साथ, और अगर कंपनीज हैं तो NTN नंबर्स के साथ एफिलिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब क्या होगा कि अब अगर पता लगेगा कि अहमद ने अगर टैक्स नहीं जमा कराया, या इसने पूरे साल के अंदर सिर्फ 500 रुपये टैक्स जमा कराया है, इसके 3 बैंक अकाउंट्स हैं, उनके अंदर इतना 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 पैसा बना हुआ है और ट्रांजैक्शंस उसकी इतनी आ रही हैं हर महीने, उसके बिल फर्ज समझाने के लिए कह रहा हूँ, इतना नहीं हूँ अमीर मैं, लेकिन बिल फर्ज 2 लाख रुपये हर महीने आता जा रहा है उसके पास बैंक्स के अंदर, और टैक्स उसने 500 जमा कराया है, तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन मार्क, कहाँ से आ रहा है पैसा? तो जितना आया पैसा, अगर वो उसके प्रूफ सही तरह नहीं दे सका तो उन्हीं पैसों के ऊपर टैक्स भी पड़ना चाहिए, पेनल्टी भी होनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट है लेकिन इसको नहीं जाने दिया जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, लैंड रिफॉर्म्स का, कि आपने प्रोजेक्ट्स भी आप लोग देखते हैं कि आपके सीनियर भी बनाते हैं गूगल मैप्स के ऊपर, फलाने के ऊपर, फलाने के ऊपर। एक प्रोजेक्ट है जो हमारे यहाँ चल रहा है, वो ये है कि जो ज़मीनें जितनी भी हैं उनके प्लॉट, वो तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज कर दी जाएँ। ये जो ज़मीनों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं, पटवारी मिल जाते हैं आपस में, ज़मीन उसके हवाले हो गई, ज़मीन के झगड़े, वो तमाम चीज़ें सोचें किस कदर सेटल डाउन हो जाएंगी अगर कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाए उसका। और कंप्यूटराइज सिस्टम भी इस तरह कि ये तब तक सिस्टम नहीं होगा, तब तक जो है वो ज़मीन नहीं ट्रांसफ़र हो सकती जब तक बायोमेट्रिक के ज़रिए लैंड ट्रांसफ़र ना हो। सिर्फ ये नहीं कि हाँ मेरा वो चला गया था, मेरे बायोमेट्रिक्स भी लिए जाएँ डेट के साथ कि इसने इस टाइम के अंदर ये फिंगरप्रिंट था, ये रजामंद हुआ है इसके ऊपर। ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हमारे अक्सर और बेशतर जो सियासतदान और फौजी और ये तमाम लोग हैं ये ज़मीनों पर कब्जे करने वाले हैं, चाहे वो डिफेंस वाली हो, हमारी आर्मी की डिफेंस हो, कि इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन पर जो डिफेंस आ जाता है किस तरह आ जाता है, ये क्या करते हैं कि जो लोअर लेवल के बदमाश होते हैं उनसे काम करवा लेते हैं और उनसे ज़मीनें कब्जे करवा के कत्ल गारत करवा के रुबू की जाता है, ज़मीन आ गई केसेस उनके खिलाफ, वो कहते हैं ठीक है हम लड़ते रहेंगे, तो वो जी शो कर देते हैं कि डिफेंस ने आगे से इनसे आर्मी ने ख़रीद ली है ज़मीन है। और जितने भी हाई रैंकिंग फौजी होते हैं वो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस का काम कर रहे होते हैं वो लोग। आईटी जो है वो बहुत प्रोडक्टिव रोल अदा कर सकता है अगर उसको सही तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। जो वॉयलेशंस होते हैं हमारे मुल्क के अंदर, एग्जांपल के लिए मैं आपको ट्रैफिक वॉयलेशंस की बात कर रहा हूँ, वरना जो मर्जी वॉयलेशंस हो, ट्रैफिक वॉयलेशंस जो हैं इनके अंदर अगर कंप्यूटराइज सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट्स छोटे हों ताकि आसान हो एडमिनिस्ट्रेट करना, ये नहीं कि पूरा पंजाब, इतना बड़ा पंजाब है, पंजाब पुलिस के हवाले है तो कितने इशारे कितना कुछ है वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। छोटे छोटे यूनिट्स हों और एडमिनिस्ट्रेशन के, गाड़ियाँ रजिस्टर्ड सही मायनों के अंदर हों, उनके टैक्सेशन का हिसाब सही तरह से हो, फ़ाइन जो हो वो बड़े बड़े फ़ाइन हो। ये क्या फ़ाइन होता है, 300 रुपये का फ़ाइन हो गया, 500 का फ़ाइन हो गया, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, 300 के फ़ाइन से क्या होगा। हाँ, अगर ये फ़ाइन हो इस तरह हो जिस तरह के यूरोपियन कंट्रीज़ में है कि फ़ाइन जब होता है ना तो हमारे हिसाब से आप यूँ समझ लें कि अगर मैंने इशारा काटा है ना तो मुझे फ़ाइन जो हुआ है वो 8 लाख का फ़ाइन हो गया। ओ तौबा खैर, अब तो मैं कभी इशारा नहीं काटूंगा, 8 लाख का फ़ाइन हो गया मुझे, अब तो मैं कभी इशारा नहीं काटूंगा। दुबई के अंदर क्या है, अगर आप बाहर के आए हुए हैं, अगर तो आप शेख हैं तो क्या ही बात है आपकी, ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर के आए हुए एक्सपेट्रिएट्स हैं, जिस तरह हम लोग होते हैं, यहाँ से जाते हैं वहाँ जाके जॉब करते हैं, और आपने इशारा काट दिया ना, आप कोई एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी या कोई और एमरजेंसी नहीं प्रूव कर सकते, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे कोई इशारा नहीं काटता, अभी तो येलो भी नहीं होने लगती लाइट, लोग पहले ब्रेक मार के रुक जाते हैं, मुझे यहीं से ना निकाल दे, अभी मेरी नौकरी गई, सब कुछ जाएगा मेरा। फाइन जो होता है वो इस तरह होता है। स्विट्जरलैंड के अंदर वहाँ पे क्या सिस्टम है कि जिस तरह यहाँ पे भी जब मेट्रो आ जाएगा कि एक दिन के अंदर आपने एक टिकट ले लिया, आप पूरे दिन में आप ट्रैवल कर सकते हैं। हैरत की बात यह है कि वहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं होता, कोई बंदा चेक नहीं करता कि आपने टिकट लिया कि नहीं लिया, हर बंदा लाइन में लगता है, टिकट लेता है और उसमें बैठता जाता है, कोई नहीं पूछता, ना ही बाद में किसी ने पूछा, पूरा दिन गुजर जाता है, महीना गुजर जाता है, कोई नहीं पूछता। कभी कभी वो रैंडम चेक कर लेते हैं, अगर रैंडम चेक कर लिया उन्होंने कि आपने इस तरह की बीमारी की थी, तो इतना ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ फ्रैंक्स का जुर्माना डालते हैं कि लोगों को बैंक के लोन लेने पड़ते हैं जुर्माना उतारने के लिए। इसलिए सीधे हुए हैं सारे लोग, बिल्कुल सीधे हुए हैं। फाइन्स और ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। इदारे हमारे जितने भी हैं वो नॉन पोलिटिकलाइज होने चाहिए, ये सियासत जो घुस गई है ना इदारों के अंदर वो निकलनी चाहिए। अगर इदारे बहुत करप्ट हो गए हैं तो फिर कुछ नए इदारे बना के उनको रिप्लेस किया जाए। बिलफर्ज़ अगर पुलिस बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो गई है तो नए यूनिट्स बनाने चाहिए उसके, ताकि उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। पैमरा जो हमारी है, पैमरा को इतना पावरफुल होना चाहिए कि एक चैनल अगर एंटी स्टेट बात कर रहा है तो पैमरा का एक ऑर्डर काफ़ी है, बस। ये नहीं कि वो आर्मी उसके खिलाफ़ हो गई है, जियो के खिलाफ, और वो उसके खिलाफ वो प्लान कर रहे हैं और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, वो पैमरा का एक ऑर्डर हो और काफ़ी हो जाए। वल्गैरिटी और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्डर काफ़ी है। कोई चैनल ने अगर गलत बयान दिए थे, जिस तरह जैसे ही शुरू हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर जो जाना शुरू हुआ था, आंसू गैस शुरू हुई थी, ARY ने फौरन चपट्टी चढ़ा दी, 7 बंदे मारे गए, 7 शहीद हुए बल्कि। अब इसके ऊपर पैमरा जो है बाद में जाके पकड़े, आपने क्यों इस तरह की झूठी खबर निकाली है, पकड़ना चाहिए इस तरह, आपने क्यों नारकी और कन्फ्यूजन पैदा की है और एंटी स्टेट नफरत क्यों उठा रहे हैं आप लोग। लेकिन हमारे इदारे कमज़ोर नहीं है ना, इदारों को स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरी है। आर्मी चाहे क्यों ना हो, अगर उसने गलत काम किया है तो उसका वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, आर्मी को नहीं जूते मारे जाएंगे, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यानी कि अगर मुशर्रफ ने कोई एंटी स्टेट किया था तो होना चाहिए उसको रिस्पॉन्सिबल, आर्मी के ऊपर नहीं, मुशर्रफ रिस्पॉन्सिबल। आर्मी के ऊपर इशारा जो होता है उसको समझ जाता है कि ये तो आर्मी की तोहिन हो रही है, फलाना हो रहा है, ये होना चाहिए। जो हमारे यहाँ जितने भी सेक्टेरियन वायलेंस है, और इस वक्त बिल्कुल दुनिया राइप है कि शिया सुन्नी की जो लड़ाई है उसको ग्लोबल स्केल के ऊपर लाया जाए, जो कि इस टाइम जो कुछ इराक सीरिया के अंदर हो रहा है और जिसके लिए सऊदी अरब, ईरान और इंडिया और ये तमाम ममालिक को तैयार किया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ इंटरनेशनल खबरें आ नहीं रही होती, हम लोग तो अलकादी को बैठ के रो रहे होते हैं, इसलिए हम लोगों को पता नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है। इस वक्त इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बड़ी जो है वो गहरे गहरे जो ट्रैप्स हैं वो खोदे गए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट या स्टेट लेवल के ऊपर एक बड़ा पैनल होना चाहिए पाकिस्तान में जितने भी मसलक हैं उन तमाम के उलमा का। ये मसलक नहीं ख़त्म कर सकते, मैं अगर आज से तकरीर करना शुरू हो जाऊँ अहले हदीसों के ख़िलाफ़ या वहाबियों के ख़िलाफ़ या बरेलवियों के ख़िलाफ़ या देवबंदियों के ख़िलाफ़ या शिया के ख़िलाफ़ या जाफरियों के ख़िलाफ़, तो ये मसले नहीं मैं हल कर सकता, बल्कि मैं और ज़्यादा फसाद खड़ा कर सकता हूँ। आप लोगों को मैं क्लियर माइंडेड नहीं बना सकता, बल्कि मैं आप लोगों के अंदर और ज़्यादा फसाद पैदा कर सकता हूँ। इसलिए जो मसले चल रहे हैं उनको इग्नोर करते हुए इन तमाम को एक पैनल पर लाया जाए, जिस तरह एक पैनल्स बनाए जाते हैं, और जितने भी दीन से रिलेटेड काम होते हैं वो इनके थ्रू करवाने चाहिए। उन लोगों को ख़ुद कहा जाए आप लोग अपने बंदों को नुमाइंदा लाया करें। मिसाल के तौर पे 3 सीटें जो होंगी वो देवबंदी मसले को दी जा रही है, मिसाल के तौर पे वो आपस में खुद ही जो है वो इस तरह लेके आए। 3 सीटें इस मसले को दी जाती हैं, कुछ सीटें इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए कि कोई और बंदा जो इसका ताल्लुक नहीं भी है मसलक से उन चीज़ों से, और उनमें से किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो भी आ सकता है, अपने आप को क्वालिफाइड शो करे कि मैं क्वालिफाइड हूँ इसके लिए, सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक ऑटोनोमस इदारा हो ताकि आइंदा जो भी रिलीजियस हमारे यहाँ फ्रिक्शन होती है, सेक्टेरियन फ्रिक्शन, उसको कंट्रोल करने के लिए, और वो मेक श्योर करें उसके अंदर, मिसाल के तौर पर जो शिया होंगे वो मेक श्योर करें कि हाँ हमारे अंडर रहते हुए हम मेक श्योर करेंगे कि कोई भी ऐसे बयानात ना हों जिससे फिरका वारियत को हवा मिले। जो सुन्नी है वो उसको मेक श्योर करें कि उनकी तरफ से ऐसी कोई बात ना हो, उनकी तरफ से ऐसा कुछ ना हो, दीन के नए मसलों के ऊपर नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ यूनिटी के लिए। और इनके जो जितने भी मदरसे और जामियात हैं वो तमाम की तमाम HEC के अंदर आनी चाहिए। ये तमाम वो चीज़ें जिससे पाकिस्तान जो है कुछ बेहतरी की तरफ जा सकता है। आप लोगों के माइंड में कोई पॉइंट है जो मैंने नहीं बोला वो बोलें आप लोग।
सर आपको पता है कि जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म और लैंड मॉर्फी को काम करना, मतलब सिस्टम को चेंज करना चाहिए सर, तो कौन करेगा? मतलब नवाज शरीफ करेगा, इमरान खान करेगा?
पिछली क्लास के अंदर ना आप नहीं थे, आपने पिछली वाली क्लास शायद सुनी भी ना हो, उसके एंड के अंदर मैंने बताया था कि बहुत सारे दुश्मन हैं जो पाकिस्तान को तोड़ देना चाहते हैं। उन तमाम मुल्कों के, एक मुल्क नहीं है, दो भी नहीं है, बहुत सारे मुल्क हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान टूटे। उन तमाम मुल्कों के मुफाद में ये होगा कि पाकिस्तान क्रिपल हो जाए। हम लोग वो वाली रेवोल्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते। और दूसरा मैंने ये बात बताई थी कि इमरान खान ने हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आज़ादी स्क्वायर। आप लोग तमाम आज़ादी स्क्वायर में आ जाएं। आज़ादी स्क्वायर से मुराद क्या थी, जो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, तहरीर स्क्वायर था, अरबी का लफ्ज़ है तहरीर, तहरीर का मतलब आज़ादी होता है। वो उन्होंने क्या हासिल किया था हुस्नी मुबारक से जान छुड़ा के? अभी तक सिविल वॉर चल रही है, इजिप्ट अभी तक संभाल नहीं सका, लीबिया के अंदर क्या हाल हुआ है? हम लोग ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ हो, और बहुत सारे ममालिक चाहते हैं कि ये हो। पाकिस्तान का रहना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे शरीयत अभी नहीं भी एकदम से नाफिज होती, पाकिस्तान सर्वाइव करेगा तो मैं शरीयत के हमको बंदा यहाँ पे बात कर सकता है ना, कि यहाँ पे कोई इस्लाम की तरफ लोग बात करें। जो लोग सेकुलर मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान सेकुलर मुल्क बनेगा, वो तभी हो सकता है जब पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान का सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बहुत अगर हम लोग गंद जूते खाते भी रहें, अभी ये निज़ाम बुरा चलता भी रहे, तब भी ये चीज़ होगी। इमरान खान फरिश्ता नहीं है, इमरान खान कंट्रोवर्सी से पाक नहीं है, ताहिर कादरी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इमरान खान किन के साथ जाके मिला है? ताहिर कादरी जाके और कोई नहीं मिला उसे, चौधरी ब्रदरान, वो तो उनकी शक्ल देखें बेचारों की। एतजाज हसन ने बिल्कुल ठीक कहा था, शेख रशीद को भी शामिल करते हुए और बाकियों को, एतजाज हसन ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जिन लोगों के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए वो तो उनके साथ आए, मैं खड़े हुए हैं। जो इनकलाब इमरान खान लाना चाह रहे हैं वो नहीं आएगा। मेरी पिछली क्लास सुन लेना, मैंने उसमें उसकी पार्टी वर्कर्स की भी बात की थी कि हमारा पॉलिटिकल जो है वो गद्दी नशीनों के ऊपर है, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर है, और हमारा जो है वो ख़ानदानों के ऊपर है। इमरान खान की पार्टी में यही लोग हैं। जहांगीर तरीन को देखें, शाह महमूद कुरैशी को देखें, जावेद हाशमी के साथ चलें, अब जो भी होता है, चौधरी बरादरी को देखें, ये तमाम लोग देखें कौन है। जी आप क्या कह रही थी? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं सही करेंगे ना, तो ये जो लेक्चर है ना ये बहुत आसान काम होता है। जो मैंने भी अभी पिछले आधे घंटे के अंदर जो मैंने तजवीज़ों वाली जब से बात की है ना, ये तो बहुत आसान काम है। ये होना चाहिए, ये फलानी चीज़ होनी चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए। असल चीज़ है कि वो करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, जो कह रहे हो वो करके दिखाओ। जो जहाद वाले लेक्चर्स थे 2012 के अंदर जो मैंने किया था, उसके अंदर एक टॉपिक था शहादत अल नास का। اس کے اندر میں نے یہی بات کی تھی کہ یہ تمام دعوت تبلیغ اچھی باتیں میٹھی میٹھی باتیں اور یا یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے اسلام کے نظام میں کوئی ظلم نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں اسلام قبول کرے گا, کوئی ملک لیول کے اوپر اسلام نہیں پھیلے گا جب تک ہم ہیں اور آپ وہ دنیا کو دکھاتے نہیں ہیں کہ پریکٹیکلی اسلام واقعی رائٹس دے رہا ہے. تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف ہم لوگ نہیں آئے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ بالفرض یہ کہ ہم یہ کانسپائر کر رہے ہیں اس کے پیچھے یہ کر رہے ہیں آپ کو ہم آگے اٹھائیں گے, ٹھیک ہے میں حاضر ہوں, یہ ہمارے اندر سے جب تک یہ چیز نہیں نکلے گی نا ہم اپنا اپنے اندر ہم تزکیہ نہیں کریں گے, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے, صرف خدا خوفی نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں کچھ حاصل کر سکتے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.